एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सफर पर निकल रहे हैं।
जी हाँ, हम बात करेंगे रोमन गणराज्य की, उसका बनना, उसका जबरदस्त फैलाव और फिर उसका पतन, या यूं कहें कि रूप बदलना।
हाँ, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो लगभग 500 साल चली, दुनिया पर राज किया और फिर जैसे अपनी ही कामयाबी के बोझ तले दब गई।
बिल्कुल, और इसे समझने के लिए हम डेविड एम ग्विन के काम को देख रहे हैं। वो रोमन इतिहास के जाने माने विद्वान हैं, खासकर उस दौर के जब गणराज्य साम्राज्य बन रहा था।
अच्छा, तो उनकी किताबों से हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, मतलब ये पुरानी कहानी आज हमारे लिए जरूरी क्यों है?
देखिए, ये सिर्फ पुरानी कहानी नहीं है, ये सत्ता कैसे काम करती है, समाज कैसे चलते हैं, बड़ी ताकत बनने की इच्छा के क्या नतीजे होते हैं।
हाँ हाँ, ये सब सवाल तो आज भी हमारे सामने है ना।
एकदम, ये कहानी पूछती है कि नियम ज्यादा जरूरी हैं या लोग, सिस्टम का मकसद क्या हो, जनता की भलाई या सिर्फ ताकत। रोमन अनुभव हमें इस पर सोचने का एक जबरदस्त नजरिया देता है।
तो आज का हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि कैसे एक इतना सफल गणराज्य अपनी ही सफलता का शिकार हो गया।
हाँ, कैसे अंदरूनी झगड़े बढ़े, गृह युद्ध हुए, तानाशाही आई और आखिर में वो एक साम्राज्य बन गया।
क्या ये कुछ लोगों की वजह से हुआ या पूरा सिस्टम ही फेल हो गया, यही पहेली सुलझानी आज। तो पहले जरा डेविड ग्विन के बारे में बात कर लें, ये है कौन?
जी, डेविड ग्विन लंदन विश्वविद्यालय के रॉयल हॉलवे में प्राचीन इतिहास पढ़ाते हैं, इस विषय के आप कह सकते हैं एक्सपर्ट हैं।
और उनकी खास बात क्या है, मतलब उनका नजरिया अलग कैसे है?
उनकी खासियत यह है कि उनका ज्यादातर काम रोमन साम्राज्य के बाद वाले दौर पर है, जब साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, ईसाई धर्म फैल रहा था।
अच्छा, तो इससे उन्हें गणराज्य के पतन को देखने में कैसे मदद मिलती है?
यूं समझिए कि वो जानते हैं कि कहानी का अंत क्या हुआ, तो वो शायद उन शुरुआती दरारों, उन कमजोरियों को बेहतर पहचान पाते हैं जो आगे चलकर इतनी बड़ी हो गई।
मतलब वो सिर्फ ये नहीं देखते कि गणराज्य कैसे टूटा, बल्कि ये भी कि उसके टूटने से आगे क्या बना, अगले 1000 साल पर उसका क्या असर हुआ।
ठीक कहा। और ग्विन सिर्फ राजनीतियां, लड़ाइयों को नहीं देखते, वो समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति सबको जोड़कर देखते हैं।
संस्थाओं के साथ साथ लोग, उनकी सोच, सामाजिक ताकतें, इन सबको।
बिल्कुल, इससे एक पूरी ज्यादा गहरी तस्वीर मिलती है, सिर्फ ढांचा नहीं बल्कि उसके अंदर की हलचल भी। तो डेविड ग्विन की किताबों का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि कब क्या हुआ, वो रोमन गणराज्य की गतिशीलता को समझना चाहते हैं।
गतिशीलता मतलब?
मतलब ये कैसे शुरू हुआ, कैसे चला, और सबसे जरूरी, ये क्यों और कैसे बदला। वो क्यों और कैसे पर ज्यादा जोर देते हैं।
अच्छा, और उनकी किताबों का जो मुख्य तर्क है वो क्या है? आपने कहा था वो चौंकाने वाला है।
हाँ, उनका केंद्रीय विचार ये है कि रोमन गणराज्य की जो असाधारण सफलता थी, वही उसके हिंसक अंत का सीधा कारण बनी।
हाय, सफलता ही विफलता का कारण, ये कैसे?
ये कोई एक घटना या किसी एक बुरे नेता की वजह से नहीं हुआ, ये एक लंबी, लगभग 100 साल चली प्रक्रिया थी। जिन संस्थाओं और परंपराओं ने रोम को भूमध्य सागर पर हावी होने में मदद की,
हाँ,
वही संस्थाएं और परंपराएं जब रोम एक विशाल साम्राज्य बन गया तो नाकाफी साबित हुई, बोझ नहीं उठा पाई।
ओ, मतलब जो चीजें एक छोटे शहर राज्य के लिए ठीक थी, वो इतने बड़े साम्राज्य के लिए काम नहीं आई।
एकदम, सिस्टम अपनी ही कामयाबी के वजन से चरमरा गया।
तो ये पूरा सफर कहां से शुरू होकर कहां पहुंचा?
शुरुआत हुई राजाओं को हटाने से, लिबर्टास यानी आजादी का मूल्य, सत्ता का बंटवारा, फिर अंदरूनी झगड़े सुलझे, जैसे पेट्रिशियन और प्लेबियन के बीच का संघर्ष।
हाँ, अमीर और आम लोगों वाला झगड़ा।
जी, फिर आया जबरदस्त फौजी फैलाव, पूरे भूमध्य सागर पर कब्जा, और यहीं से, जैसा ग्विन कहते हैं, मुश्किलें शुरू हुईं।
फैलाव के साथ क्या आया? दौलत।
दौलत आई, बेशुमार गुलाम आए, जमीन का संकट पैदा हुआ, और इन सबने मिलकर गणराज की नींव हिला दी।
और अंत में गृह युद्ध
और ऑगस्टस का सम्राट बनना।
बिल्कुल, कामयाबी और तबाही का एक अजीब सा संगम है ये पूरी कहानी।
चलिए जरा शुरुआत से देखते हैं, ये गणराज्य बना कैसे। 509 ईसा पूर्व में राजा को हटाया गया।
हाँ, रोम के लोगों को राजाओं से सख्त नफरत हो गई थी, उन्हें डर था कि सारी ताकत एक आदमी के हाथ में नहीं जानी चाहिए।
यहीं से रेस पब्लिका का विचार आया, मतलब सबका साझा मामला,
यानी तानाशाही नहीं मिलकर राज चलाना।
बिल्कुल, और इसके लिए संस्थाएं बनाई, दो कौंसिल जो हर साल चुने जाते थे
ताकि कोई एक जम ना जाए।
सही कहा। फिर सीनेट थी, अनुभवी लोगों की सभा जो सलाह देती थी पर असल में बहुत ताकतवर थी, और आम लोगों की सभाएं भी थी।
मतलब कोशिश थी कि पावर बंटी रहे, चेक और बैलेंस रहे।
हाँ, और सबसे बड़ा आदर्श था लिबर्टस, तानाशाही से आजादी।
लेकिन आपने कहा कि अंदरूनी झगड़े भी थे, वो पैट्रिशियन और प्लेबियन वाला।
जी, आदेशों का संघर्ष, ये अमीर खानदानों और आम लोगों के बीच अधिकारों की लड़ाई थी। प्लेबियन कई बार शहर छोड़कर भी चले गए अपनी बात मनवाने के लिए।
अरे, हड़ताल जैसा कुछ।
हाँ, कह सकते हैं। इसी संघर्ष से ट्रिब्यून का पद बना, उसके पास वीटो पावर थी, वो किसी भी सरकारी आदेश को रोक सकता था।
अच्छा।
और वो 12 तालिकाएं, वो क्या थी?
वो रोम का पहला लिखा हुआ कानून था। इससे प्लेबियन को थोड़ी सुरक्षा मिली।
लेकिन कमाल की बात यह है कि ये झगड़ा खून खराबे में नहीं बदला।
नहीं, ज्यादातर समझौते हुए नए नियम बने, और इससे रोम अंदर से टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ।
इसी एकता ने उन्हें इटली जीतने की ताकत दी,
और वो हारे हुए लोगों को साथ मिलाने वाली नीति भी तो थी।
बिल्कुल, वो अक्सर हारे हुए लोगों को सहयोगी बना लेते थे, नागरिकता तक दे देते थे। ये उस जमाने में बहुत अनोखी चीज थी, और इससे रोम की ताकत बहुत बढ़ी।
इटली के बाद फिर बारी आई कार्थेज की, प्यूनिक युद्ध।
हाँ, भूमध्य सागर की दूसरी बड़ी ताकत। तीन भयानक युद्ध हुए, हैनिबल जैसा दुश्मन मिला जिसने रोम को हिलाकर रख दिया,
लेकिन आखिर में रोम ही जीता।
हाँ, रोम जीता और भूमध्य सागर का बेताज बादशाह बन गया। लेकिन यहीं से ग्विन के मुताबिक वो जहर फैलना शुरू हुआ जिसने गणराज्य को बीमार कर दिया।
ये जीते जहर कैसे बन गई?
पहला असर देखिए, अर्थव्यवस्था पर। जीते हुए इलाकों से सस्ता अनाज और लाखों की तादाद में गुलाम इटली आने लगे।
अच्छा, तो इससे क्या हुआ?
इससे इटली के जो छोटे किसान थे, जो अपनी जमीन पर मेहनत करते थे और रोमन सेना की रीढ़ थे, वो तबाह होने लगे।
क्यों?
क्योंकि उनका अनाज महंगा पड़ता था और गुलामों की वजह से उन्हें काम भी नहीं मिलता था। वो अपनी जमीनें बेचकर बेरोजगार हो गए और रोम शहर में जमा होने लगे।
बापरे, तो रोम में एक बड़ी बेरोजगार आबादी तैयार हो गई।
हाँ, एक अस्थिर गरीब शहरी आबादी। दूसरा असर हुआ अमीर और गरीब के बीच की खाई पर।
वो कैसे?
सेनेटर और बड़े लोग जो प्रांतों के गवर्नर बनते थे, वो वहां से लूटकर बेहिसाब अमीर हो गए, जबकि आम आदमी और गरीब होता गया। ये फासला बहुत बढ़ गया।
समाज में तनाव बढ़ गया होगा
बहुत ज्यादा। और तीसरा बड़ा असर पड़ा राजनीति और सेना पर।
वो कैसे?
देखिए, दूर के प्रांतों पर कब्जा रखने के लिए बड़े बड़े जनरलों को लंबे समय तक बड़ी सेनाओं की कमान देनी पड़ती थी।
हाँ, ठीक है।
इससे ये जनरल बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए। सीनेट का कंट्रोल उन पर कम हो गया, उनकी अपनी वफादार सेनाएं बन गई।
ओह, तो सेना राज्य के बजाय जनरल की वफादार होने लगी।
बिल्कुल, और इन ताकतवर पदों और सेनाओं के लिए आपस में होड़ इतनी बढ़ी कि वो खूनी होने लगी।
तो यही ग्विन का मुख्य तर्क है कि फौजी कामयाबी ने ही ये सारी समस्याएं पैदा की।
हाँ, गणराज्य का जो ढांचा था, जो नियम थे, वो एक छोटे शहर के लिए बने थे। वो इतने बड़े जटिल साम्राज्य का बोझ नहीं उठा सके। सिस्टम आउटडेटेड हो गया।
इसकी पहली आहट कब सुनाई थी?
लगभग 130 ईसा पूर्व में ग्राची भाइयों के साथ तिबेरियस और गायुस रैकस ये ट्रिब्यून बने।
हाँ, आपने जिक्र किया था, उन्होंने जमीन बांटने की कोशिश की थी।
जी, उन्होंने देखा कि छोटे किसान बर्बाद हो रहे हैं और जमीन अमीरों के पास जा रही है, तो उन्होंने सरकारी जमीन गरीबों में फिर से बांटने का कानून लाने की कोशिश की।
लेकिन सीनेट के अमीरों ने विरोध किया,
जबरदस्त विरोध। और सिर्फ विरोध नहीं, हिंसा हुई, दोनों भाइयों को भीड़ ने मार डाला।
ये तो बहुत बुरा हुआ।
ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसने रोम के दो अलिखित नियम तोड़ दिए। पहला, ट्रिब्यून का पद पवित्र माना जाता था, उस पर हाथ नहीं उठाया जाता था।
और दूसरा?
दूसरा, राजनीतिक झगड़े रोम की गलियों में खून खराबे से हल नहीं किए जाते थे। यहां से राजनीतिक हिंसा का रास्ता खुल गया।
इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद आए गायस मारियस, एक नया आदमी, मतलब पुराने अमीर खानदानों से नहीं था, वो एक सफल जनरल था।
उसने सेना में सुधार किया था ना?
हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि जमीन वाले किसान कम हो रहे थे सेना में भर्ती के लिए, तो मारियस ने शहर के गरीब भूमिहीन लोगों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया।
अच्छा, किस वादे पर?
उसने वादा किया कि उन्हें तनख्वाह मिलेगी, लूट में हिस्सा मिलेगा और रिटायरमेंट पे जमीन भी।
ये तो गरीबों के लिए अच्छा रहा होगा।
फौरी तौर पर हाँ, लेकिन इसका नतीजा बहुत खतरनाक निकला। अब सेना नागरिक सैनिकों की नहीं रही जो देश के लिए लड़ते थे।
तो फिर कैसी हो गई?
ये एक प्रोफेशनल सेना बन गई, और इन सैनिकों की वफादारी रोम या सीनेट के लिए नहीं थी,
बल्कि
अपने जनरल के लिए थी, जो उन्हें पैसा और जमीन देता था। यहीं से क्लाइंट आर्मी का दौर शुरू हुआ।
क्लाइंट आर्मी मतलब ग्राहक सेना।
हाँ, अब सैनिक अपने जनरल का ग्राहक बन गया। उसकी वफादारी जनरल के प्रति थी। ये बदलाव गणराज्य के लिए घातक साबित हुआ।
अब समझ में आया, सेना ही अब जनरलों का निजी हथियार बन गई।
बिल्कुल, और यहीं से उन ताकतवर जनरलों का दौर शुरू हुआ जिन्हें हम सरदार या वॉरलॉर्ड्स कहते हैं।
जैसे कि सुल्ला।
हाँ, लूशियस कॉर्नेलियस सुल्ला। वो पहला रोमन जनरल था जो अपनी सेना लेकर रोम शहर पर चढ़ गया। ये पहले कोई सोच भी नहीं सकता था।
उसने फिर क्या किया?
खुद को तानाशाह बनाया और प्रोस्क्रिप्शन लिस्ट जारी की।
प्रोस्क्रिप्शन, ये क्या था?
ये एक तरह की सरकारी मौत की लिस्ट थी। जिन लोगों का नाम लिस्ट में होता था उन्हें कोई भी मार सकता था, और उनकी जायदाद जब्त हो जाती थी। बहुत क्रूरता थी।
हे भगवान, फिर तो पोम्पी, क्रेसस और जूलियस सीजर आए, पहली ट्रिम्यूरेट।
हाँ, ये कोई सरकारी पद नहीं था, बस तीन ताकतवर लोगों का एक गैर कानूनी गठबंधन था। पोम्पी सबसे मशहूर जनरल, क्रेसस सबसे अमीर आदमी, और सीजर सबसे चालाक नेता।
इन्होंने क्या किया?
इन्होंने मिलकर सत्ता पर कब्जा कर लिया, सीनेट को एकदम किनारे लगा दिया, सब फैसले आपस में मिलकर करने लगे। हाँ, और वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ गई। फिर पोम्पी से उसकी दुश्मनी हुई
और गृह युद्ध छिड़ गया।
जी, सीजर जीता और उसने खुद को डिक्टेटर परपेचुओ घोषित कर दिया, मतलब हमेशा के लिए तानाशाह।
ये तो गणराज्य की सीधी सीधी मौत थी।
बिल्कुल, इसीलिए कुछ सेनेटोरों ने मिलकर उसे मार डाला। उन्हें लगा कि इससे गणराज्य बच जाएगा,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
नहीं, बल्कि और भयानक गृह युद्ध शुरू हो गए। अब दूसरी त्रिमिवीरेट बनी, सीजर का गोद लिया बेटा और वारिस ऑक्टेवियन, सीजर का वफादार जनरल मार्क एंटनी और एक और जनरल लैपिडस।
इन्होंने भी प्रोस्क्रिप्शंस किए?
हाँ, और भी ज्यादा क्रूरता से हजारों लोगों को मरवाया गया, जिनमें सिसरो जैसा महान विचारक भी था जो गणराज्य का बड़ा हिमायती था।
आखिर में लड़ाई किस किस के बीच हुई?
आखिर में लैपिडस किनारे हो गया और लड़ाई बची ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी के बीच। एंटनी उस वक्त मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा के साथ था।
एक्टियम की लड़ाई 31 ईसा पूर्व।
बिल्कुल, ऑक्टेवियन जीत गया और अब वो पूरी रोमन दुनिया का अकेला मालिक था।
लेकिन उसने खुद को राजा या तानाशाह घोषित नहीं किया।
नहीं, यही उसकी चालाकी थी। वो सीजर से ज्यादा समझदार था। उसने कहा, मैंने तो गणराज्य को फिर से बहाल कर दिया है, रेस्पब्लिका रेस्टिट्यूटा।
लेकिन असल में
सारी ताकत उसी के हाथ में थी। उसने सीनेट, काउंसिल, सब पुराने पद बनाए रखे, लेकिन वो सब नाम के थे। उसने खुद के लिए उपाधि ली ऑगस्टस, महान या पूज्य, और प्रिंसेप्स, पहला नागरिक।
वाह, मतलब देखने में गणराज्य पर अंदर से साम्राज्य।
एकदम, उसने गणराज्य का मुखौटा पहने रखा, और रोम के लोग जो सालों के खून खराबे से थक चुके थे उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्हें आजादी से ज्यादा शांति और स्थिरता चाहिए थी।
तो ये था गणराज्य का अंत और रोमन साम्राज्य की शुरुआत।
जी, तो इस पूरी कहानी से और ग्विन के विश्लेषण से क्या बड़े सबक या संदेश मिलते हैं?
हाँ, ये जरूरी है। पहला तो यही कि कामयाबी ही मुसीबत बन सकती है।
बिल्कुल, रोम की जीतें ही उसके लिए भारी पड़ गई। दौलत, जमीन, गुलाम, ये सब पुरानी व्यवस्था संभाल नहीं पाई। सोचिए, क्या आज भी तेज आर्थिक विकास कभी कभी समाज में नए तनाव पैदा करता है?
हाँ, करता है। दूसरा, नियमों और परंपराओं का धीरे धीरे टूटना, वो मोसमायोरम वाली बात।
हाँ, जब अलिखित नियम टूटने लगते हैं, हिंसा आम हो जाती है, सत्ता के लिए कोई भी तरीका अपनाया जाने लगता है, तो व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। क्या आज हम राजनीतिक बहस में ऐसी गिरावट देखते हैं?
शायद हाँ। तीसरा, सेना का चरित्र बदलना, वो ग्राहक सेना वाली बात।
जी, जब सेना देश के बजाय जनरल की वफादार हो जाए तो वो लोकतंत्र या गणराज्य के लिए खतरा बन जाती है।
चौथा, अमीर गरीब की बढ़ती खाई। जब समाज इतना बढ़ जाता है तो अस्थिरता आती है।
हाँ, और ताकतवर लोग इस बंटवारे का फायदा उठाते हैं।
भारत में भी आर्थिक असमानता एक बड़ा मुद्दा है, इसके असर पर सोचना जरूरी है।
और पांचवा, व्यक्ति का व्यवस्था पर हावी होना। बिल्कुल, जब नेताओं की निजी महत्वाकांक्षा देश के हित से बड़ी हो जाती है तो गणराज्य कमजोर होता है। आखिर में शायद ऑगस्टस का एक छत्र राज ही अराजकता से बचने का एकमात्र रास्ता बचा था, क्योंकि गणराज्य पूरी तरह टूट चुका था।
ग्विन के विश्लेषण से कुछ बातें वाकई दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे वो कहते हैं कि गणराज्य को किसी ने मारा नहीं, वो खुद अपने दिए जख्मों से मरा।
हाँ, कि ये व्यवस्था की विफलता थी, किसी एक व्यक्ति की नहीं।
और वो मारियस वाली बात भी कि उसने फौरी जरूरत पूरी की, पर लंबे समय के लिए तबाही का दरवाजा खोल दिया सेना का चरित्र बदलकर।
बिल्कुल, एक छोटा बदलाव कितना बड़ा असर डाल सकता है।
और ऑगस्टस की चालाकी कि उसने जीत को छुपाया, गणराज्य का नकाब पहने रखा।
हाँ, ये दिखाता है कि सत्ता कैसे काम करती है, छवि कितनी जरूरी होती है।
और कुछ और बातें थीं, जैसे रोम की शुरुआत में लोगों को साथ मिलाने की नीति।
हाँ, नागरिकता देना सिर्फ एहसान नहीं, ताकत बढ़ाने का तरीका था।
और सेनेट की ताकत परंपरा पर थी, कानून पर कम,
जिससे वो लचीली भी थी और कमजोर भी।
और ये विरोधाभास कि सफल जनरल जरूरी भी थे और खतरनाक भी।
सही कहा।
तो आज हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं, अपने लिए, अपने समाज के लिए?
कई चीजें। पहला, राजनीतिक ध्रुवीकरण का खतरा। जब गुट आपस में बात करने को तैयार ना हो तो सिस्टम जाम हो जाता है।
हाँ।
दूसरा, अत्यधिक आर्थिक असमानता का खतरा। जब बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो समाज में अस्थिरता आती है।
तीसरा, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियमों का महत्व। सिर्फ कानून काफी नहीं, आपसी सम्मान, बहस का तरीका, शांति से हार जीत मानना, ये अलिखित नियम भी बहुत जरूरी हैं।
सही बात है।
चौथा, सेना को राजनीति से दूर रखना।
और पांचवा, ताकत और पैसे का मोह कैसे अच्छे अच्छों को भटका सकता है, देश हित से ऊपर निजी हित को रखवा सकता है।
ये सारी बातें तो आज भी एकदम लागू होती हैं, सोचने वाली हैं।
बिल्कुल, ये हमें अपनी संस्थाओं, अपने समाज में शक्ति संतुलन, नियमों के सम्मान और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर नजर रखने की जरूरत याद दिलाती हैं।
मेरे लिए इस चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, चाहे कितनी भी पुरानी या मजबूत लगे, वो नाजुक हो सकती है।
हाँ, उसका टिके रहना सिर्फ कानून पर नहीं, बल्कि आपसी भरोसे, नियमों के पालन और हाँ, कुछ हद तक बराबरी पर निर्भर करता है।
और पतन अक्सर अचानक नहीं आता, धीरे धीरे होता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने से।
और मेरे लिए एक अहम बात ये भी है कि कामयाबी खुद एक खतरा बन सकती है। गणराज्य की संस्थाएं शायद अपने समय के लिए ठीक थीं, पर वो बदले हुए हालात के साथ ढल नहीं पाईं।
ये हमें लचीलेपन और वक्त के साथ बदलने की जरूरत सिखाता है।
बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ बुरे नेताओं की कहानी नहीं, ये एक पूरी व्यवस्था की आंतरिक विफलता की कहानी है और एक चेतावनी भी।
हाँ, ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये सत्ता, समाज और इंसान की कमजोरियों के बारे में एक सबक है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। और ये सवाल कि क्या किसी गणराज्य की सबसे बड़ी जीत ही उसके अंत का कारण बन सकती है, वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।